Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Amit Goel.
Namaskar, Market Mantra karyakram mein aapka swagat hai. Aaj ke ank mein desh videsh ki aarthik gativithiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur charcha karenge. Charcha ke liye aaj hamare studio mein aamantrit hain varishth patrakar Harveer Singh. Harveer, karyakram mein aapka swagat hai.
Shukriya.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा।
थैंक यू अमित। यस फ्रेंड्स, द हेडलाइंस फर्स्ट। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड इन फ्लैट। सेंसेक्स क्लोजेस एट 75,410। निफ्टी सेटल्स एट 22,957। Rupee jumps 18 paise against the US dollar in the forex market and crude prices trade flat in global crude market.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। सेंसेक्स 75,410 और निफ्टी 22,957 के स्तर पर दर्ज हुआ। मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए में 18 पैसे की मजबूती और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। सबसे पहले शेयर बाजार पर नजर डालते हैं। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 8 अंक की मामूली गिरावट से 75,410 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 11 अंक के मामूली बदलाव से 22,957 के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान निफ्टी पहली बार 23,000 के स्तर के पार भी पहुंचा, लेकिन बाद में बिकवाली से इसमें गिरावट नजर आई। बीएसई मिडकैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक 0.2% की मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहे।
Sensex and Nifty settled flat today amid negative cues from the global share markets. The BSE Sensex inched down by 8 points or 0.01% to close at 75,410. NSE Nifty slid 11 points or 0.05% to settle at 22,957. During the day's session, Nifty crossed the 23,000 mark for the first time before finishing flat at the closing bell. In the broader market at the BSE, the mid-cap index increased by 0.2%, while the small-cap index fell 0.2%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 9 companies appreciated, 21 companies declined. HDFC Bank rose 1.6%, Bharti Airtel gained 1.12%, and Larsen & Toubro up by 1.1%. On the other hand, Asian Paints dropped 1.2%, Tech Mahindra declined 1.18%, and ITC slipped 1.16%. In sectoral indices at the BSE, 8 sectors registered gains, 9 witnessed losses, while 3 sectors had a flat day. Telecommunication rose 1.8%, capital goods gained 1%, and industrials added nearly 0.6%. On the other hand, services fell 1.5%, FMCG shed 0.7%, and information technology declined 0.55%. Utilities, auto and consumer durables are the 3 that ended nearly flat. The overall market breadth was negative as shares of 2,159 companies advanced and 1,689 companies declined and 97 companies remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 18 पैसे की मजबूती से 83.10 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स गिरावट से 104.8 के स्तर पर रहा। हरवीर, किस तरह से देखते हैं आज शेयर बाजार की दशा के बारे में? क्या कल शेयर बाजार ने चूंकि एक बहुत तगड़ी छलांग लगाई थी, कल से मतलब है कि जो पिछला कारोबारी सत्र था, तो ये उसका असर है कि आज बाजार में उसको लेके हल्की सी बिकवाली या मुनाफा वसूली कही जाए, या बाजार में जो वैश्विक कारण है उनका भी असर था, या सारी चीजों का कुल मिलाजुला नजर ये था?
देखिए, एक तो आज मार्केट नॉन इवेंट की तरह से पड़ा, अगर हम उस तरह देखें तो मामूली सा अंतर है, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में लगातार जो रैली थी उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स थे। पहले अगर हम देखें कुछ सत्र के पहले मार्केट में गिरावट आई थी कुछ, बिकॉज जनरल इलेक्शन है उसके साथ बहुत सारे सेंटिमेंट्स और फैक्टर्स हैं वो है। दूसरे ये भी है कि जो आरबीआई का एक इम्पैक्ट था जो डिविडेंड देने का आरबीआई ने बोला 2 लाख करोड़ से ज्यादा का, उसका किस तरीके से इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव असर आएगा, उससे डिमांड जनरेट होगी या गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को उससे मेंड करेगी, तो देयर आर ऑप्शंस। बट उसके लिए जाहिर सी बात है कि जब नई सरकार आएगी वो तय करेगी, बजट जब फुल बजट आएगा उस वक्त तय होगा। उसका एक कल मार्केट में एक बड़ा असर देखा गया है। और दूसरे ये भी है कि कुछ हद पोजीशंस थी एफआईआईज वगैरह की, उनका भी लिवाली वगैरह रही कुछ पिछले दिनों में, उससे भी मार्केट में एक उछाल था। तो ये फैक्टर्स थे आज का, क्योंकि जो अमेरिका के जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं और जो इन्फ्लेशन का प्रेशर कंटिन्यू है उसके चलते सिर्फ हमारे ही नहीं बाकी मार्केट्स में भी उसका असर जो एशियन मार्केट्स हों और इवन यूरोपियन मार्केट जब चले तो वहां देखने को मिला। तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा यह कहें जो आराम की तरह से देखा चीजों को, और बहुत बड़ा कोई हमें आज उस तरीके मार्केट में हलचल नहीं दिखती।
क्या माना जाए कि 4 जून को जब भारत में चूंकि चुनाव का एक बहुत बड़ा पर्व चल रहा है, ये 4 जून के आसपास तक बाजार की दशा और दिशा लगभग इस तरह से सतर्कतापूर्ण, कभी तेज कभी मंदा, या एक सधी हुई चाल की तरफ से चलता हुआ नजर आएगा, या कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी आ सकते हैं जो एक दिशा दे दें बाजार को?
देखिए, चुनाव काफी लंबे समय से चल रहा है और उसका बार बार हम बाजार के साथ जोड़ के देखते रहे, मुझे लग रहा है बाजार ने बहुत सारी चीजें फैक्टर कर ली हैं। और हमें यहां ये भी देखना चाहिए कि जो एफआईज हैं उन्होंने मार्केट से कुछ एग्जिट किया, बिकवाली की पिछले कुछ दिनों में, बट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फ्लो बढ़ाया। बट ये भी एक बात है कि तमाम सारे एनालिस्ट मानते हैं कि जो स्टॉक्स हैं हमारे वो ओवर वैल्यूड हैं, ये एक फैक्टर है। तो इसलिए ये जो 4 जून की हम बात करें, डेफिनेटली देखिए अभी चुनाव चल रहे हैं और कोई भी बहुत मजबूती के साथ ये नहीं कह सकता कि किस तरीके का मैंडेट आएगा
जी।
तो और मार्केट बहुत ही संवेदनशील एक एक इस तरह का एक सिस्टम है मार्केट का कि वो काफी कुछ सेंटिमेंट्स के साथ चलता है। तो जो जो एनालिस्ट हैं उनका अपने अपने तर्क आ रहे हैं कि अगर करंट जो डिस्पेंसेशन है वही रिटर्न करता है तो ये परिस्थिति बनेगी, फिर ये होगा, देन बजट में क्या होगा। बट डेफिनेटली 4 जून को हम लोग जो है जब नतीजे आएंगे तो मार्केट पे उसका सीधा असर देखेंगे। ये बात सही है कि मार्केट ने रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है और जो स्टॉक्स हैं वो मेरे ख्याल से उनका वैल्यू अभी बहुत ही बेहतर स्थिति में है, मतलब बेहतर इन द सेंस जो जिनके पास स्टॉक्स हैं और जो चाहेंगे वो अगर कुछ उथल पुथल होगी तो दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एंटर द मार्केट और टू इन्वेस्ट इन सम स्टॉक्स।
दो चीजें आपके सवाल में कि बाजार ने बहुत सारी चीजों को फैक्टर कर लिया है, जो आमतौर पर माना जाता है कि बाजार दूरदृष्टि ज्यादा दिखाता है, और अगर बाजार उसके बावजूद भी इस स्तर पर है, क्या स्पष्ट संकेत माने जाए कि बाजार आश्वस्त है कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो एक स्थायी सरकार को दर्शा रहे हैं?
एक चीज आप मानिएगा कि अगर हम 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ हमारे देश
जी,
उसके बाद जिस दिशा में हमारी इकोनॉमी गई है, जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, जो डिसीजंस हैं, वो एक मार्केट इकोनॉमी को मजबूत करने वाली दिशा में लगातार गए हैं। और कोई भी सरकार आती रही, तब से हमने बहुत सारी सरकारें देखी जो है इन करीब अब तो काफी समय हो गया है, मतलब करीब 35 ईयर्स के आसपास की बात हो गई है, 34। तो डायरेक्शन में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, और क्योंकि उसने इकोनॉमी को मजबूत किया है, इकोनॉमी को एक्सपेंड किया है और लगातार एक्सपेंड किया है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं बिजनेस की भी, जॉब्स की भी और एक्सपेंशन की भी, और इंडियन इकोनॉमी मजबूत होकर लगातार निकली है। तो ये कोई भी डिस्पेंसेशन आए, किसी भी तरीके का मैंडेट आए, जो हमारा जो डायरेक्शन है पॉलिसीज की उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, ये मेरा मानना है इतने लंबे समय से देखते हुए। और जो मार्केट के एनालिस्ट भी हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग एफआईज एंड एफपीआईज, वो भी मेरे ख्याल से इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं। तो इसलिए मार्केट जो है वो वो एक मजबूत स्थिति में
बाजार की संवेदनशीलता को देखते हुए, लेकिन बाजार अपने आप को भी मजबूत बना के रखा हुआ है कि जिस तरह सरकार के भी जो भी कदम हो, लेकिन वो बाजार आश्वस्त है कि जो प्रगति का दौर है वो जारी रहेगा।
Harveer, as you mentioned, a record surplus transfer from the Reserve Bank of India yesterday had the sense of touching record 75,418. After that, now spectrum and critical mineral auctions are expected to happen, which will bring in some cash flows in the first half of the current fiscal. Add to that a good performance by CPSUs, at the central public sector units and public sector banks. All this leading to a stable and a good stock market ahead.
Yes, of course. You see that when fiscal situation is very good and positive, mm-hmm. and all these factors are directing towards that. So in that case, if market also looks toward the fundamentals of the economy, the one of the most important fundamental is whether the finances of the government are strong or not. Mm-hmm. In that sense, if we just see this dividend announced by RBI, which is supposed to be given to the government, yes. it comes around more than 0.3% of the GDP.
Yes.
So it's a big number. And
it's been a record number.
Yeah, it's a record number. Mm-hmm. And so it will give more space to the government to make some decision. Mm-hmm. And now it is on the government that the money will be used for to give more welfareism, or will be used that money to correct the fiscal situation.
Mm-hmm.
But at the same time, as you mentioned, that even public sector banks are also owned by the government. Earlier we have seen the government was infusing capital into the banks.
Yes.
So that kind of burden we are not seeing. And the GST number in April was very high, more than 2 lakh crore. So all these things are showing that government finances are in a good condition, but we are supposed to see that the disinvestment target and revenue from other than income from other than revenue resources, so that will also be adjusted by the government as per the target fixed by the government.
Right. When we talk of other things, other factors, do you think the rural and urban demand has also grown up? Rural demand was low, but we recently found that the two-wheelers sale was unprecedented. That also marks the return of demand from the rural sector. And does it affect the markets?
Actually, there are mixed signals from rural demand,
mm-hmm.
and low-income segment of the society. So just one data showed that rural growth, demand growth is more higher than, basically, more than the urban demand. But at the same time, if we see the result of the FMCG companies, like we have just seen one big company, ITC or Hindustan Lever, these are the basically barometer of demand, because just to see whether demand revival is there or not.
Mm.
So we have to wait, I think, that resurgence of rural demand. And at the same time, one big two-wheeler company also said, because definitely the number of vehicles being sold under this EV segment is growing,
mm-hmm.
but the two-wheelers, just to stabilize the demand of earlier peak levels, we have to wait for that.
अरविंद, एक चीज जिस तरह से अभी लालिमा ने कहा कि अगर टू व्हीलर्स की, मतलब दोपहिया वाहन की अगर डिमांड बढ़ती है, तो क्या ये मानने के पर्याप्त कारण है कि ये जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं निकल कर आ रही है? और साथ ही साथ जिस तरह से आपने इसके बाद कहा कि चूंकि जो एफएमसीजी कंपनी के जो आंकड़े हैं वो उतने उत्साहजनक नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कंपेरिजन सीधे सीधे नजर आता है?
देखिए, ये एक माना जाता है कि मोबिलिटी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. तो व्हेन एनीबडी और एक कोई भी व्यक्ति जब साइकिल से अगला उसका जो स्टेप होता है वो टू व्हीलर की तरफ होता है, मोटराइज्ड टू व्हीलर की तरफ होता है, और उसके बाद उसका फोर व्हीलर की तरफ होता है. सो अगर उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास एक ऐसा व्हीकल हो जो उसको मोबिलिटी दे, बिकॉज दैट ऑल्सो एज एफिशिएंसी, बेटर लाइफ एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी. तो ये बिल्कुल माना जाता है. और जो लार्ज स्केल का जो मास स्केल पर जो सेल होती है टू व्हीलर्स की, बिकॉज टू व्हीलर्स भी आजकल बड़े महंगे भी होते हैं, बाइक्स 2 लाख 5 लाख 20 लाख उस तरह से होते हैं, बट जो सेगमेंट मानते हैं सब 1 लाख 70,000 80,000 1 लाख, तो ये जो लो कॉस्ट के टू व्हीलर वो ज्यादातर आपका सेमी अर्बन और रूरल मार्केट में ज्यादा बिकते हैं, और अर्बन में भी जो लो सेगमेंट के लोग होते हैं वहां पर ज्यादा बिकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनका बिक्री अच्छी हो रही है तो सोसाइटी में जो निचले तबके के लोग हैं उनके हाथ में पैसा आ रहा है,
उनकी परचेज पावर बढ़ रही है।
बिल्कुल, तो एक तो ये मान के चलें कि जो पिछला साल था वो रूरल इकोनॉमी के लिए इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो बहुत बेहतर नहीं था। उसमें अगर हम देखेंगे डिफरेंट क्रॉप के जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं वो उतना एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब फिर हम देख रहे हैं कि एक सामान्य मॉनसून की एक आईएमडी ने एक बोला है कि इस तरीके का अनुमान लगाया है और वी होप के टाइमली मॉनसून आ जाएगा, तो ये खरीफ अच्छा जाएगा, खरीफ अच्छा जाएगा मीन्स फेस्टिवल सीजन अच्छा जाएगा, और जब ये होगा तो उसका मतलब ये है कि डिमांड बढ़ेगी और रूरल इकोनॉमी अच्छी होगी और उसका फिर इम्पैक्ट रबी तक रहता है, बिकॉज पानी अच्छा है तो रबी क्रॉप विल ऑल्सो बी बेटर। तो ये एक डायरेक्ट एक रिलेशन है। ये बात सही है कि हमारा करीब 50% जो एरिएबल लैंड है वो अब अंडर इरीगेशन है, लेकिन बाकी जो 50% है वो काफी कुछ निर्भर करता है मॉनसून पे, और जो इरिगेटेड एरिया भी है वो भी, क्योंकि हमारे रिजर्वायर्स और डैम्स में कितना पानी है और वो बारिश से ही तय होता है, वो दोनों के बीच रिश्ता है।
अभी तो डैम्स में पानी बहुत कम है, ऑल ओवर कंट्री वी फाइंडिंग दैट आवर मेजर डैम्स आर हैव अबाउट 1/4 द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ वाटर। हाउ इज दैट गोइंग
नो एक्चुअली
दैट एडवर्सली अफेक्ट आवर इकोनॉमी एंड एग्री इकोनॉमी।
लास्ट मॉनसून वॉज नॉट गुड इन सम एरियाज, एट द सेम टाइम विंटर रेन were also very poor this time, so less rain in winter also affected our agricultural production and the level of reservoirs, the water level in reservoirs.
Harbir, aaj agar rupaye mein 18 paise ki mazbooti aati hai to do cheeze main janna chahunga, lagbhag dollar ke muqable rupaye 83 rupaye ke level pe bahut samay se ke aas paas, matlab isme lagbhag ek range bound bana ke rakha hai, kya mana jaye? Aapne abhi jaise kaha ki रिजर्व बैंक भी चाह रहा है कि रुपए में तकरीबन स्टेबिलिटी तो रहे लेकिन वो दायरा यहीं तक रहे, बहुत ज्यादा उसमें भी उतार चढ़ाव ना हो, और जिस तरह से अभी इतने होने के बावजूद भी रिजर्व बैंक ने इतना बड़ा अगर सरकार को लाभांश दिया है, इन दोनों के बीच का तारतम्य मैं समझना चाहूंगा, क्या रिजर्व बैंक इस फेयर इसको मान रहा है कि जो 83 रुपए डॉलर के हिसाब से है वो एक फेयर वैल्यू है रुपए की, और इस पे रिजर्व बैंक संतुष्ट है कहीं ना कहीं?
मैं देखिए, एक तो लंबे समय से जैसे आपने भी इस बात को कहा है कि रुपया 83 रुपए डॉलर के थोड़ा ऊपर उसके आसपास चल रहा है
जी,
और हमारे रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो काफी बेहतर हैं, बट अगर हम देखें कि इधर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नंबर्स उतने बेहतर नहीं रहे, पिछले साल से थोड़ा कम है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स के थ्रू फॉरेक्स की अर्निंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर, बट उसमें हमारे रेमिटेंस बहुत अच्छे आए हैं, बिकॉज द फ्लो ऑफ डॉलर एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर यही तो रुपए को तय करेगा कि वो कहां रुकेगा, और रिजर्व बैंक ने हमने मार्केट के ऊपर छोड़ा हुआ है, जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है अनयूजुअल तब रिजर्व बैंक उसमें इंटरवीन करता है
जी।
तो ऐसे में मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक का मानना है कि ये स्थिति ठीक है, और जैसे आपने कहा कि रुपया स्ट्रेंदन होता है उसके अपने फैक्टर्स हैं, उसका हमें फायदा है बिकॉज हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो सस्ते पड़ते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारे एक्सपोर्ट हैं
वो महंगे
नहीं, वो कम, उनका कम्पिटिटिवनेस कम हो जाती
है,
तो ये एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस दोनों के बीच में होता है, तो इसलिए और दोनों इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं।
So we have a weak rupee vis-a-vis a stable rupee. So the tug of war goes on. All right. You talked about some agricultural aspects. We move on with some wheat news. Well, procurement of wheat during Rabi marketing season 2024-25 is going on smoothly in the major procuring states across the country. Over 262 lakh metric tons LMT of wheat has already been procured so far this year in the central pool, surpassing last year's total procurement of 262.02 LMT, that is lakh metric tons. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said a total of 22.31 lakh farmers have been benefited during Rabi marketing season, with total MSP outflow to the tune of 59,715 crore rupees. Well, major contribution in the procurement came from five procuring states: Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. Rice procurement is also progressing smoothly. Over 728 lakh metric tons paddy, equivalent to 489.15 lakh metric tons of rice, has been procured so far directly from 98.26 lakh farmers, with total MSP outflow of over 1 lakh 60,000 crore rupees. Lot of figures here. You are the best person to interpret this story for our listeners. Yes, Harvish.
Actually, last year cannot be a benchmark for the level of procurement of wheat. Last 2 years were not good. Year before, our procurement was very low. Due to the basically crop was not good, and since the unusual temperature rise in the month of March affected wheat crop.
And this is the wheat grain was smaller in size.
Yes, that is the timing when after grain filling, grain hardening starts, and all the milk converts into grain, hard grain. So that procurement was low. Last year we crossed more than 262 lakh ton of procurement, but our earlier stocks were good, so we managed very well. Government also offloaded almost 10 million ton of wheat in the open market sale through an open market sale scheme, just to intervene in the market to control the prices of wheat in the open market. This time we have crossed last year's level, so I hope that we also go, get more and more wheat. But more or less, the procurement season is ending now. It has almost ended in Madhya Pradesh. But Punjab did very well. Punjab procured record wheat quantity. And the reason is that this year, weather was very favorable for wheat crop in the region of Punjab, Haryana, and Western UP. And yields are very good. Record yield in some areas. But Madhya Pradesh, number from Madhya Pradesh for wheat procurement is disappointing. So government just estimated that government may get around 8 million ton of wheat from Madhya Pradesh. At 1 year, I think around 4 years back, Madhya Pradesh surpassed Punjab in wheat procurement. But now Madhya Pradesh procurement numbers are low. I think you have just mentioned here. Haryana did well, more than 7 million ton. So I think there will be reasonably good quantity with the government because it was around 7.5 million ton of wheat on 1st of April of 2024. But it was lower since 2008. But it was above the buffer norm. Buffer norm is around 7.4 million plus some quantity. So we have sufficient wheat for running our National Food Security Act's responsibility. So there is sufficient quantity, and there will be some surplus wheat also with the government to intervene if required in the market. But this year, procurement must have crossed at least 30 million ton. So far so good. It is okay, I think, even at this level.
Lekin Harbi, ek cheez, agar gehun ki जो खरीद है वो इतनी बेहतर है तो बाजार भाव के बारे में क्या माना जाए कि बाजार भाव गेहूं का कितना स्टेबल या कितना स्थायी रहेगा इन सब चीजों के ऊपर या आम उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव नजर आएगा
देखिए अगर हम देखें जो लेटेस्ट आंकड़ा है इन्फ्लेशन का उसमें आई थिंक जो फूड ग्रेन इन्फ्लेशन है दैट इज 8.63 और 64% कम्पेयर टू लास्ट ईयर वीट में अभी उतना दाम नहीं बढ़ा है दालों वगैरह की वजह से ज्यादा ये इन्फ्लेशन आया है और राइस की क्वांटिटी हमारे पास अच्छी है उपभोक्ताओं को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है बट हमारा प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है वो लास्ट ईयर से ज्यादा रहा है 2275 रुपया क्विंटल था और मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बोनस दिया था तो वहां 2400 रुपए क्विंटल था। तो जाहिर सी बात है ये प्राइस एक बेंचमार्क की तरह से मानी जाती है, उसके ऊपर दूसरे भी लागतें आती हैं, टैक्सेस हैं, देन बैगिंग है, देन स्टोरेज है। सो मे बी के गवर्नमेंट के पास स्टॉक्स होंगे और अभी की रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो पूरी हो जाएगी तो प्राइसेस में बहुत ड्रामेटिकली कोई ऐसा ज्यादा
लगभग
तो उपभोक्ताओं को मेरे ख्याल से, और वैसे भी सरकार जो 5 किलो व्हीट काफी लोगों को देती है
80 करोड़
मोर देन जो है तो उससे भी प्राइस का क्या है कि डिस्काउंट हो जाती है बिकॉज जिनके ऑलरेडी जिनको आ रहा है तो वो मार्केट में उस तरह से खरीदार की तरह नहीं जाते तो ये एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है इवन टू कंट्रोल द प्राइसेज ऑल्सो।
जी नफर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.4%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2%, जापान का निकेई 1.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1% की गिरावट से बंद हुआ। सिंगापुर का स्टेट टाइम सूचकांक भी मामूली गिरावट से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरूआती रुझानों में नुकसान नजर आया। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.4% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
US markets, well, the US stocks ended lower yesterday, overshadowed by economic data showing inflation was still a concern that could delay any Federal Reserve rate cuts. Dow Jones Industrial Average fell 1.5% and the S&P 500 declined 0.74% and Nasdaq slipped 0.39%. So inflation still a cause of concern in the US and for that matter even in the UK?
Yes.
Though it has stabilized in US, but still high.
Still high means from the expectation of the Fed Reserve and the benchmark by fixed by the Fed just to decide about the interest rate, to take a call on that.
Right. And oil prices were stable today but poised to show a weekly loss under pressure from lingering concerns that sticky inflation could prolong higher interest rates and curb fuel demand. The Brent crude oil futures decreased by 0.32% to $81.10 a barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI was down by 0.26% to $76.67 a barrel when reports last came in.
सराफा बाजार में सोने के वायदा भाव आज लगभग पुराने स्तर पर बने रहे। सोना 71,579 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि चांदी 792 रुपये की बढ़त से 91,229 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $2,364.70 प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी मजबूती से $30.78 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। हरवीर, सोने ने पिछले समय में जितनी चमक बिखेरी है और चांदी भी उससे कदमताल करती हुई नजर आती है, माना यह जा रहा है कि कौन पहले 1,00,000 के स्तर को पार करेगा, आपका टेक? क्योंकि अगर बाजार ने, शेयर बाजार ने 75,000 का आंकड़ा छूता है तो लेकिन वहीं तुरंत हम देखते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में भी एक अच्छा खासा गिरावट नजर आती है। क्या दोनों के बीच में कोई तारतम्य है?
नहीं, देखिए, एक तो जो इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जाहिर सी बात है कि गोल्ड पर्टिकुलरली वो एक ऑप्शन की तरह होता है कि इन्वेस्टर कहां पे उसको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, गोल्ड में मिलेगा, स्टॉक्स में मिलेगा या फिर डिपॉजिट्स में मिलेगा। तो दूसरे गोल्ड के पीछे एक फैक्टर ये भी है कि जो ग्लोबली अगर अनसर्टेनिटी कहीं आती है तो गोल्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमोडिटी और उसमें जो सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग बढ़ जाती है,
जबरदस्त केंद्रीय बैंकों ने भी खरीद
तो
करी है,
इवन हमारे आरबीआई ने भी खरीदा। तो ये गोल्ड के पीछे जस्ट इन्वेस्टर और कंज्यूमर नहीं होता, उनका प्राइसेस के और बाकी फैक्टर्स भी साथ में चलते हैं।
कितना स्टेबल नजर आता है कि अगर चांदी तकरीबन 92,000 और अगर सोना हम 72,000 के आसपास मानते हैं तो
देखिए ये काफी तेजी से बढ़े हैं दोनों। अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों के अंदर जो प्राइसेस हैं गोल्ड की और इवन सिल्वर की बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि एक टाइम के बाद इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वीक होने लगता है।
जी हरवीर, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेज एंड इन फ्लैट। सेंसेक्स क्लोजेस एट 75,410, निफ्टी सेटल्स एट 22,957। रुपी जंप्स 18 पैसे अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन द फॉरेक्स मार्केट एंड क्रूड प्राइसेस ट्रेड फ्लैट इन ग्लोबल क्रूड मार्केट। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज मायसेल्फ लालिमा अनेजा डैंग एंड माय को एंकर Amit Goyal signing off. Namaskar. Market Mantra.
मौजूद सत्ता।